राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল বল হরি বল জয় প্রভু পদা প্রভু পদা জয় প্রভু পদা জয় গুরুদেবা 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 জয় গুরুদেবা শিশুপাদ পরমহংস ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মহারাজ কি লীলাপ্রবেশ শিশুপাদ পরমহংস বিচার স্তোত্র সন্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম সে কহো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবশ্রী গৌরভক্তবৃন্দ কি শ্রী রাধা কৃষ্ণ গোপীনাথ শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন কি বৃন্দাবন মথুরা ধাম কি নবদ্বীপ মায়াপুর ধাম কি জগন্নাথপুরী ধাম কি মৌজপীঠ লর্ড শ্রী 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 রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র ভগবান কি শ্রী শ্রী গৌর নিতাই কি শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা কি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়নিতাই গৌর প্রেমানন্দে অল গ্লোরি টু দ্য অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস অল গ্লোরি টু দ্য অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস অল গ্লোরি টু দ্য অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস অল গ্লোরি অলওয়েজ শ্রী গুরু অ্যান্ড শ্রী গৌরাঙ্গ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তি ভবতি নৈষ্ঠিকী কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবিকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরিয়ে পরমাত্মনে প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগ প্রয়োজিতঃ জনয়তে আশু বৈরাগ্যম জ্ঞানম চেয়েদ হেতুকম আজ শ্রীমদ ভাগবতম কে চৌথে স্কন্ধ কে সত্তাইশ অধ্যায়কে ষটবা শ্লোক পড়ে যা রে তস্যাম অঞ্জনয়ত পুত্রান পুরঞ্জন্যাম পুরঞ্জনঃ শতান্যেকাদশ বিরাট আয়ুষ ধর্ম আয়ুষ অর্থম অত্যগান তস্যাম জনয়ত পুত্রান পুরঞ্জন্যাম পুরঞ্জনঃ শতান্যেকাদশ বিরাট আয়ুষ অর্থম অত্যগান তস্যাম অজনয়ত পুত্রান পুরঞ্জন্যাম পুরঞ্জনঃ শতান্যেকাদশ বিরাট আয়ুষ অর্ধম অথাত্যগান শিলে প্রভুপাদ দ্বারা অনুবাদ এবং তাৎপর্য শিলে প্রভুপাদ কি তব নারদ মুনি নে রাজা প্রাচীন বর্হিষত কো সম্বোধিত করতে হুয়ে কহা হে বিরাট इस प्रकार राजा पुनर्जन के अपनी पत्नी पुनर्जनी के घर में 1,100 पुत्र उत्पन्न हुए।
किंतु उस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। कृपया दोहराएंगे, तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिषद को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पुत्री पुरंजनी के गर्भ में गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु उस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन की अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है, यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसमें से 50 वर्ष तो आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश उस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे, जैसा कि अगले श्लोक में पता चलेगा कि राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के बाद साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुईं। उस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न इस समय के लोग इतने अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते, उन्हें वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें वैदिक साहित्य से ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो, यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या का नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, किंतु उस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पाप में जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजन के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विशेष जीवन पर संयम रखना होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि निर्वाध गति से संभोग तो किया जाए किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न हो जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी गर्भधर पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मात्र निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि वह जीवन कृष्ण चेतना में प्रकृति के निमित्त हो, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं। संतानें परिणाम हैं और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार हो ही उसकी संतानें अथवा परिणाम होनी चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुवदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादि देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्व श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं जयतां सरतो पंगुमन मंदमदे गतिमत्सरस्वदाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहिनो। यहाँ पर हम लोग कई दिवसों से पुरंजन राजा पुरंजन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी ने इस कथा के माध्यम से राजा प्रचीवर्षित को ये बताया है कि भौतिक संसार के सभी भौतिक प्राणी जो हैं, एक्चुअली पुरंजन का मतलब यह हुआ कि पूर्व मने ये देह और जन्म ने देही या ये आत्मा। तो जीवात्मा जो है ये भौतिक विषयों और विषय वासनाओं की पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार की योनियों और नाना प्रकार के पुरों में जाता रहता है। ही इज ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। संसार चक्र भ्रमता शरीरणों। तो ये जो भ्रमण करता रहता है इसलिए हम सभी लोग पुरंजन है देखा जाए तो। तो नारद मुनि जो ये कथा कही है इज ए काइंड ऑफ एनोलॉजी है ये, और इन घटना के द्वारा वो बता रहे थे कि किस प्रकार इस भौतिक संसार में हम सभी पुरंजन की तरह विषय वासनाओं को भोग भोगने के लिए हम कितने लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और इसमें अपना सही जो उद्देश्य है जीवन का, जो सही गोल है, लक्ष्य, उसको भूल जाते हैं। तो पहले सबसे बात यह हम भूल जाते हैं कि इस शरीर की संपत्ति तो है आत्मा और परमात्मा। इसके स्वामी हमारा जो शरीर है इसके दो स्वामी हैं, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वो एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो स्वामी भी है और साथ साथ में हमारा मित्र भी है और सखा भी है। वो सबसे सच्चा बंधु है, हमारे साथ बैठा हुआ है और हम उसको भूल जाते हैं। ये पहले नारद मुनि ने कहा था कि आसीत पुरंजन नाम राजा राजन बभुश्रवा और क्या तस अभिज्ञात सखाम, और ये सखा जो है अननोन है। हमारे हृदय में ये मेरा सबसे सच्चा मित्र बैठा हुआ है और हम उसको भूल जा रहे हैं, और उसको भूलते हुए हम नाना प्रकार के बहुत ही कार्य करते हैं, बहुत सारे धर्म में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहले अध्याय में जो राजा पुरंजन ने वो शिकार खेलने गया था जंगल में, और उसने बहुत सारे पाप कर्म किए, नाना प्रकार के जानवरों को, पशुओं को उसने मारा, और इसके बाद वो थक गया, ही वॉज टायर्ड, तो उसने ब्रेक लिया। तो उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि ये इतने पाप कर्मियों को कर रहे हैं। तो वापस वो घर आया, घर आके उसने विश्राम किया, जलपान किया, भोजन किया, और तब वो संतुष्ट हुआ। तो वो उसकी देखा कि उसकी पत्नी जो है जमीन पर लेटी हुई है, तो उसमें एक धार्मिक प्रवृत्ति का जागरण हुआ कि इतने सारे पाप कर्म मैंने किए हैं, उसको एक पश्चाताप हुआ है। तो वास्तव में देखा जाए तो हर जीवात्मा को कहीं ना कहीं ये आभास होना चाहिए कि संसार में हम इतने पाप कर्म कर रहे हैं, अब इनको कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लेना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, और हमें धार्मिक प्रवृत्ति में जुड़ना पड़ेगा। वो दूसरी बात है कि धर्म कई प्रकार के होते हैं, एक होता है भागवत धर्म, एक होता है सांसारिक धर्म। तो पुरंजन जो है अभी वो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने का तात्पर्य यह है कि उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो अच्छे वस्त्रों में नहीं है, जमीन पर लेटी हुई है, बिस्तर में भी नहीं है और बहुत दुखी है। तो उसने अपने पत्नी से बहुत ही स्नेह और प्रेम पूर्वक वचन कहे और उसकी तरह वह बहुत ही प्रेम दर्शाया और एक गृहस्थ आश्रम में अपनी इस प्रकार ये जीवात्मा जो है अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है और बाद में जब उसे उसकी बुद्धि लौटती है तो घर वापस लौटता है। और जो कहते हैं पत्नी वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब यह हुआ कि वो धार्मिक बुद्धि है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये धार्मिक प्रवृत्ति है उसकी जो पत्नी है, इट इज ए धार्मिक इंटेलिजेंस, वो बुद्धि है और वो प्रेरणा देती है कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि गृहस्थ में पति पत्नी मिलकर के ये घर को चलाएं, यह गृहस्थ आश्रम को चलाएं। लेकिन क्या हुआ कि वो जो जो स्त्री होती है वो रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। एक प्रकार की स्त्री जो है विष्णु माया है, नारी विष्णु माया प्रकट। जो स्त्रियां होती हैं भगवान विष्णु की माया है और वो तमोगुण और रजोगुण का एक सिंबल है, प्रतीक है। तो उनसे अगर हम ज़्यादा एसोसिएशन करेंगे तो क्या हुआ कि वो धार्मिक बुद्धि को उसने अपनाया, बाहर के पाप कर्म को छोड़ करके घर आया। लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें वो लीन हो गया, संलग्न हो गया अपनी पत्नी के साथ विषय भोग भोगने के लिए कि वो तमोगुण से अभिभूत हो गया और उसको अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा का भी ज्ञान नहीं रहा। तो ये क्या होता है, संसारिक भौतिकतावादी लोगों की यही प्रवृत्ति है। जैसा कि ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्थे विनुजाम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम देह दिस्मान ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। तो नायम देहो देह भाजाम, हम लोग देह भाजाम है, देह भाजाम बहुत लोग भक्ति भाजाम है, हम लोग देह भाजाम कर्म भाजाम है। तो कर्मी लोग हैं वो कर्म भाजाम कहलाते हैं और अपने शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं उन्हें कहते हैं देह भाजाम। देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि का मतलब यह हुआ कि अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हुए और इसका ही भरण पोषण करने लग जाते हैं। देखा जाए तो ये क्या है, ये शवतुल्य शरीर है, ये शरीर जो है शव के समान है, इसमें अगर आत्मा निकल गई तो ये शव के समान है। जैसे कि एक दूसरे श्लोक है, यस्मात्म बुद्धि कुणके ति धातु के, ये रक्त मांस और चमड़े तीन धातुओं का बना हुआ शरीर है, ये जो है शव के समान है और उसमें उसको आत्मा मानना, ऐसी बुद्धि समझना, वो क्या होता है, जनेशु अभिज्ञेशु सैव गोकरः। तो मनुष्य होते भी वो गधे के समान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस रक्त मांस और चमड़े से धातुओं से बने हुए शरीर को जो शव के समान है उसको अगर आत्मा समझता है और अपने सगे संबंधियों को, अपने पत्नी और पुत्रों को यदि उनमें आसक्त रखकर मैं वो मेरा मानता है तो वो क्या है, मनुष्य होते भी वो गधे के समान है। तो कह रहे थे नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते पुनर्जामे। तो भौतिकतावादी पुरुष जो है बहुत कष्ट के साथ अपनी कामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए कामनी को भोग करने के लिए कंचन चाहिए, सोना चाहिए, अर्थ चाहिए। तो बिना कंचन के कामनी प्राप्त नहीं हो सकती है, तो कंचन प्राप्त करने के लिए बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन ये सुविधा जो है वो कुत्तों सूरों को अपने आप मिल जाती है बड़ी आसानी से ही। कष्टान कामान अर्ते विनुजाम, ये तो कह रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, इज नॉट मेंट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बड़े पुण्यों के प्रभाव से मिला है। महापुण्य प्रभाव है ना मानुषम जन्म लभ्यते, ऐसा करुण पुराण में कहा गया है। छोटे मोटे पुण्य नहीं, बहुत बड़े बड़े पुण्यों के प्रभाव से ही मनुष्य शरीर मिलता है। कहीं अज्ञात सुकृति हो जाती है, भक्त लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो वो सुकृति वो श्रवण करके पशु योनि से मनुष्य शरीर मिल जाता है, या फिर कोई कृष्ण प्रसाद किसी पशु को मिल गया तो उसके आस्वादन से मिलता है। तो महापुण्य का प्रभाव ही है। लाखों लाखों पशु पक्षी हैं और वृक्ष इत्यादि हैं, किनको भगवान नाम सुनने का अवसर मिलता है और कितनों को कृष्ण प्रसाद आस्वादन करने का अवसर मिलता है। तो ये कोई अज्ञात सुकृति और महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य में प्राप्त होता है, और उसको हमें क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तपो दिव्यम मने दिव्य तप, मने ऐसा तपस्या करो जो कि भगवान के प्रति हो। देखा जाए तो चकवरी ठाकुर कहते हैं कि ये जो लता है वृक्ष हैं पेड़ हैं, ये भी तपस्या कर रहे हैं, ये भी निराहार रहते हैं, खाली जल पर रहते हैं और खड़े रहते हैं। शीत आतप बात वरिषणा, अरे सर्दी हो गर्मी हो जाड़ा हो वर्षा, तो सब में खड़े रहते हैं, सहनशील भी हैं हाँ। लेकिन वो तपस्या उनकी तपस्या के दिव्य नहीं है, क्योंकि वो तपस्या भगवान की प्रति नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तो जब तपस्या हो रही है, बहुत लोग जो है सेल्फ इमोल्यूशन करते हैं, जैसे कि जैन मुनि लोग क्या करते हैं कि वो अपना शरीर त्याग कर देते हैं। आप जाइए तो बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ करके उपवास करते हैं और मरणोपरांत उपवास करके शरीर त्याग देते हैं। तो वो सब तपस्या दिव्यम नहीं है। वो तपस्या जो है वो रजोगुणी तपस्या है या तमोगुणी तपस्या है। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सत्व माने अंतःकरण। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अब यहां पर क्या हुआ, पुरंजन जो है सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो रहा है, कि धर्म पत्नी जो है उससे बाहर भटकता रहा और उसको उसको पश्चाताप हुआ कि बहुत तुमने गलत किया, आप घर में आकर के अपना कृष्णाष्टम करने। लेकिन क्या हुआ, वो धर्म में प्रवृत्त हुआ, उसको कभी कभी याद आया महामना माने दान भी देना चाहिए, व्रत वगैरह तो यज्ञ दान तप में उसकी वृद्धि हुई, लेकिन वो भोग में प्रवृत्त हो गया। और वो धर्म जो है वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है, भागवत धर्म है। जैसे एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, स्वधर्मनिष्ठ क्या सतजन भी पुमान। अगर कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक भी धर्म का पालन करे, धर्म के नियम का भली भांति पालन करे, ऐसा नहीं भली भांति, एक झूठ भी ना बोले 100 जन्मों तक, सत्य है दया है शौच है हाँ, ये सब का पालन करे, जो कि असंभव सा है। हम दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं और यहाँ 100 जन्मों में एक बार झूठ नहीं बोलना तो कैसे होगा। तो वो जाके ब्रह्मा का पद मुरिंजिताम एति ततो परम हिमाम। तो स्वधर्म निष्ठा सदजन्म ही पुमान, ऐसा व्यक्ति जो कि 100 जन्मों तक बिल्कुल धर्म का नियम का भली भांति पालन कर रहा है, हमेशा सत्य का पालन करता है, दया है उसमें तपस्या है सब कुछ है शौच भी है, लेकिन तब जाकर ब्रह्मा का पोस्ट मिलता है उसको। और अगर 100 जन्म में एक भी मिस्टेक हो गई तो चाहे खाना खा के मुंह धो नहीं धोया हाथ नहीं धोया, अभी धर्म का पालन नहीं है। भोजन करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी, शुद्ध नहीं होती है, मुख और हाथ की शुद्धि जरूरी है, वो भी नियम है। अरे भाई कितनी बार कैसा होता है, आप सफारी में जा रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि भाई कहाँ हम मुंह धोए कहाँ हाथ धोए, तो धर्म का पालन नहीं हुआ। तो ये जो है सांसारिक धर्म है ये बहुत मुश्किल है। वो भी अगर 100 जन्म तक करो ब्रह्मा का पद मिल जाएगा, और उससे भी ज्यादा अगर तपस्या करोगे तो क्या होगा, शिव जी शिवलोक में जा सकते हो। लेकिन अभ्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम, भगवान के जो भक्त हैं एक जन्म में ही वो वैष्णव पद माने विष्णु पद प्राप्त कर लेते हैं, जो कि देवी देवताओं को क्या होता है, वो उनकी जो है सटल जो भी सेंसेस है वो जाएंगी या प्रलय काल में ही वो जा सकते हैं। विबुधा कलाते पदम यथा हम विबुधा कलाते, तो जो वैष्णव पद देवताओं को प्रलय काल के बाद मिलता है, क्योंकि जब जीवात्मा की ये देह की मृत्यु होती है तो ये जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है ना वो साथ साथ में जाते हैं, उनका नाश नहीं होता है। जो भी मन आपके मन है, इस जीवात्मा का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो स्थूल इंद्रियां चली जाती हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां है, मन बुद्धि सटल सेंसेस मन बुद्धि अहंकार, वो साथ साथ में जाता है, हर जन्म में वो जा रहा है। तो जब तक कहा गया है यहाँ पर कि देवता लोग तभी भगवान धाम में क्वालिफाइड होंगे तो जाते हैं जबकि उनकी सटल सेंसेस सब नष्ट हो जाती हैं, माने मन बुद्धि अहंकार भी नहीं रहता है, और वो कब होता है, प्रलय काल के समय। तो कितना वेट करना पड़ेगा बताइए, आप देव लोग जाएंगे, देव लोग जाने से क्या फायदा है, भगवान के धाम जाने में तो प्रलय काल तक वेट करना पड़ेगा। ब्रह्म लोग भी जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां से आप भगवान धाम जा पाएंगे। ब्रह्मा का पोषण मिल भी गया, और अगर मान लीजिए मृत्यु के समय में भगवान याद नहीं आए तो कोई गारंटी नहीं है, फिर आपको छीने पुण्य मते लोकम विशंति आना पड़ेगा। तो शिवलोक भी जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन भगवान की जो भागवत है, भागवत धर्म का पालन करने से क्या होगा कि आप इसी जन्म में आप भगवान के धाम जा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कहते हैं एवं धर्म मनुष्याणाम उद्धव आत्म निवेदिनाम। धर्म की जो व्याख्या भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में उद्धव से है कि एवं धर्म मनुष्याणाम क्या है, आत्मनिवेदनम समर्पण शरणागति। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो शरणागत होता है जीव, वो ही वास्तविक धर्म है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो कहते हैं धर्म वही है, एवं धर्म मनुष्याणाम उन्धव आत्मनिवेदिनाम मैं संजायते भक्ति ही को अन्य अर्थो अश्य अवशिष्यते। अगर भगवान अब जीवात्मा का भगवान सौभाग्य से अगर भक्ति का उदय बीज उदय अंकुरित हो गया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो प्रामाणिक गुरु हरिपरायण गुरु की कृपा से या भगवान के भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से कोई सौभाग्यवान पुरुष को ही भगवान की भक्ति मिलती है। ये बहुत ही दुर्लभ है। पुराणों में और वेदों में ऐसा कहा गया है कि भगवान की जो अविरल भक्ति है वो बड़े बड़े योगी मुनि भी खोते रहते हैं, उनको मिलती नहीं है। तो रामायण में कहा गया है अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव जेहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। कोई मिलता है ऐसे मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, भगवान ने भी प्रेम कहा है। तो कोई बिरला व्यक्ति है जिसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो सब धर्म का सब बोलते भी अपने धर्म का हम पालन कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, आप कह रहे भक्ति करो भक्ति करो, क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे जानते हैं नहीं बुरा कर रहे हैं। वो आप रास्ते में चल रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़ों को मार रहे हैं, जल पी रहे हैं उसमें कितने कीड़े जा रहे हैं, पत्नी रसोई कर रही है उसमें कितने जो है साग भाजी काटने में कितने कीड़े मर रहे हैं, पकाने में मर रहे हैं, चक्की में कितने गोहियों के साथ धुन, तो कितने हम बुरा लोग कर रहे हैं जाने अनजाने में, यहाँ जाने में नहीं कर रहे अनजाने में कर रहे हैं। तो ये धर्म वही है, भागवत धर्म है। तो ये जो भागवत धर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी पुरंजन यहाँ पर क्या है, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो रहा है, सोच रहा है मन में, वो पत्नी के साथ लेटा हुआ है शैया में, लेकिन वो सोच रहा है कुछ दान धर्म करना चाहिए महामना, और वो धर्म, लेकिन वो वास्तव में क्या है कि वो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में है, इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा ही विषय भोग में प्रवृत्त हो गया है। तो यह वास्तव में देखा जाए तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधीर स्मान ब्रह्म सौख्यम। तो जब तक हम अपने अंतःकरण को जो है दिव्य तप के द्वारा या भगवान के भक्ति द्वारा शुद्ध नहीं करते हैं कि अंतःकरण में जो है बहुत सारी हृदय ग्रंथियां हैं, तो उसको भेदन करना पड़ेगा। भिंजते हृदय ग्रंथि, इसके क्या है, इसके बाद छिंदनते सर्व संशया, वो भेदन छेदन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी गांठ पड़ जाती है ना तो गांठ जो है जल्दी खुलती नहीं है, उसको फिर काटना पड़ता है। उसको हरि नाम के द्वारा काटेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा यह इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया 1100 पुत्र व्यतीत करने में। 100 साल की यदि आयु है, पुंसा वर्ष शतम आयु, 100 वर्ष से ज्यादा कोई जीता नहीं है, तो 50 वर्ष उसके वहीं बीत गए। तो ये देखा जाए तो ये सबके हम सबके साथ यही हो रहा है कि हमारा आधा जीवन जो है वो रात्रि में चला जाता है, सोने में और इंद्रिय तृप्ति करने में, और दिन जाता है खाने में और कमाने में। जैसे कि वो दूसरे स्कंद का श्लोक है ना कि निंद्रया ह्रियते नक्तम विवायेन चवावयः। इसके बाद दूसरा क्या है, हाँ, दिवा हरते या राजन कुटुंब भरणे नवा। तो लोग बोलते हैं भाई मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, अच्छे माह में चल रहा हूं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आप मुझे डांट रहे हो। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, अपना मनुष्य जीवन वेस्ट कर रहे हो। कुटुंब भर नहीं ना वा, जितने पशु पक्षी हैं सब अपना कुटुंब भर रहे हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं, वो जाते हैं और चारा लाते हैं, खाने के लाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये पशु पक्षी में और मनुष्य में अंतर क्या है, धर्म का अंतर है। वो की भागवत धर्म, आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान येतन पुष भी नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। तो धर्म के बिना ये मनुष्य पशु के समान है, ये कितने लोगों को मालूम है, 99.9% लोगों को मालूम नहीं है। वो बोलते हैं कि आप आहार श्री राधा बिंदन भगवान कीजिए, तो आहार वो भी कर रहे हैं, आहार हम भी कर रहे हैं, वो भी निद्रा कर रहे हैं, वो भी हम भी निद्रा कर रहे हैं। जैसे क्या है वो दोहा अच्छा है, रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो ये सभी के साथ हो रहा है। रात्रि में जो है हम 12-12 घंटा सोने में लगा देते हैं, आधा जीवन व्यतीत हो गया और इंद्रिय भोग करते रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। लेकिन वो ठीक है, अगर संतान भी आप करे, अगर वो कृष्ण भावना भावित हो तो आपका जन्म सफल हो गया। अगर कोई संतान उत्पत्ति हुई है और वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो संतान उत्पन्न करने का कोई लाभ नहीं है। कहते पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु जसु होई, जासु होई। तो वही माता और वही पत्नी, वही स्त्री जो है पुत्रवती कहलाने योग्य है, जिसका कि पुत्र राम भक्त हो या कृष्ण भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। और यही शिक्षा विष्णुदेव भगवान कर रहे हैं कि वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को भगवत धाम नहीं ले जा सके, और वो पिता पिता नहीं है जो पुत्र को भगवत भक्ति ना दे सके। तो अगर माता वही माता कहलाने योग्य है, वही पुत्रवती है जो कि अपने पुत्र को राम भक्त या कृष्ण भक्त बनाए। तो लेकिन वास्तव में देखा जाए, हम संतान उत्पत्ति कर, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट्री में लेक्चर दिया है कि हम संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, इंद्र भोग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, गर्भ निरोधक चीजें यूज कर रहे हैं, उसको भी हम ब्रेक, वो भी बहुत बड़ा पाप है। ये जो पहले के जमाने में लोग कोई गर्भ निरोधन नहीं करते थे, और हर जगह भगवान शुरू से ही जो है भगवान भगवत भक्ति क्या आचरण सिखाते थे, रामायण गीता भागवत पढ़ाते थे बच्चों को। आजकल क्या हो रहा है, अभी बच्चा चलने लायक भी नहीं हो रहा है तब से बोले तुम क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे। अरे भाई उसका भी ठीक से चल भी नहीं रहा है और डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो। मातु पिता बालकन सिखा वही उधर भरे सोई जतन करा वही। कलयुग में ही हो रहा है, कलयुग में जैसे ही थोड़ा सा 8-10 साल का हुआ नहीं उसको सिखाते हैं कि तुम अपना पेट कैसे भरोगे। तो पेट भरना ही सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो। और आप देख नहीं रहे हो कि भगवान की सृष्टि में इतने बड़े बड़े जीव हैं, हाथी जैसे लोग हैं, वो कोई नौकरी करने जाते हैं क्या, काम करने जाते हैं क्या वो? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। बड़ा बड़ा अजगर है वो कहीं नौकरी करने नहीं जाता, हाथी भी नौकरी नहीं करता है, चाकरी नहीं करता है, लेकिन जब भगवान उनका पेट भर रहे हैं तो भगवान के अपने भक्तों का पेट नहीं भरेंगे। भगवान इतने जो है वो निष्ठुर नहीं है, भगवान दयालु, भगवान भक्त वत्सल है। और सब भगवान चाहते हैं कि हमारे जितने पुत्र हैं, ममैवांशु जीव लोके जीवभूत सनातना मना सष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी करशति। ममैवांशु जीव लोके, ये जितने भी हम हैं भगवान जो हम जीव के भगवान के पुत्र हैं। अहम बीज प्रद पिता, और ब्रह्मभूत सनातन भी है, हम ब्रह्मभूत भी हैं सनातन भी हैं, लेकिन क्या हुआ माया के चक्कर में पड़ करके जो है हम अपना असली देह भूल गए हैं। और क्या कर रहे हैं, मन सृष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थान कर सती, और मन और 6 इंद्रियों के साथ, मन के साथ जो 5 इंद्रियां के साथ जो है संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। वास्तव में देखा जाए तो मन ही जो है माइंड कैन लिबरेट यू और माइंड कैन पुट यू इन बॉन्डेज। मन जो है आपको ये कर्म बंधन में डाल सकता है, और मन ही जो आपको मोक्ष दिला सकता है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम क्या है, शत्रु मन है। आत्मयु बंधनो आत्मा आत्मयु रूपो आत्मनः, बंधु आत्मना आत्मनस्य येनात्मयो आत्मना जितः। अगर आपका मन वही बंधु है जो कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए शिक्षा दे रहा है, और जो मन जो इधर उधर भाग रहा है वो सबसे बड़ा शत्रु है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द मैन काइंड इज माइंड। इसीलिए अवंती ब्राह्मण कर रहे हैं ना, क्या करें, नायम जनो वे सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त ये तर। ये जितने भी लोग हैं ये दुख मेरे दुख के कारण नहीं है, ये हमें दुख नहीं दे रहे, मेरे परिवार वाले ये लोग जो है सब, और न देवता है न ग्रह है न कर्म है न काल है, ये सब भी हमको दुख नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा मेरा दुश्मन क्या है, मन है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो बिना लगाम के इधर उधर भागता है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहा है। मन में यदि आप निश्चय करें कि हम कल से या आज से हरि नाम लेंगे ही, तो ये मन आपका मित्र हो गया। ये मन को संकल्प करना पड़ेगा, बहुत सारे संकल्प विकल्प मन में चलते रहते हैं, तो उन संकल्प और विकल्प को हम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा उन्हें संयम कर सकते हैं। तो जो संकल्प करते हैं विचार आते हैं, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, वो गाइड करता है, ही इज द डायरेक्टर। लेकिन वो सुप्रीम डायरेक्टर परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति, वो घुमाने वाले भगवान है, परमात्मा है। तो मन जब परमात्मा की नहीं सुनता है और अपने जाता है तो मन हमारा शत्रु है, और मन परमात्मा की सुनता है तो हमारा मित्र है। तो ये जो मन है, इस मन जैसे यहां पुरंजन का क्या हुआ, वो शिकार खेल के आया, बहुत थक गया था, बहुत विश्राम था, मन शांत नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस भौतिक संसार में किसी का मन शांत नहीं है, मन जो है बिल्कुल अशांत है। इतने सारे भौतिक सुविधाएं हैं, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, महल हैं, तो फिर भी मन शांत नहीं है, शांत नहीं है। और अच्छी तरह से रात में निद्रा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शांत मन कैसे रहेगा। मन तभी शांत होगा कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसको ही मन प्रशांत है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान, उसके शीत और गर्मी उसके लिए बराबर है, सुख दुख बराबर है, मान अपमान बराबर है। तो भक्त में ये लक्षण होते हैं, भक्तों में ये लक्षण होते हैं कि वो प्रशांत होते हैं, वो शांत रहते हैं। शांत समदिशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्ति अंधस्य अच्युत प्रदम अच्युत प्रिय बांधवः। वो किसी के साथ भी द्रोह नहीं रखते हैं और सबसे मैत्री रखते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनसे ज्यादा मैत्री रखते हैं, अच्युत प्रिय बांधवः। ऐसे लोग जो है अंजति यान्ति अंजति अच्युत प्रदम, वो भगवान विष्णु का पद बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। महिला क्या है? शांत समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरंजनः। शांत होना चाहिए मन, जब तक मन अशांत है आप शांत हो ही नहीं सकते हैं। मन में इतने सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये करना है वो करना है, ये नहीं करना है वो करना है, तो क्या होगा? मन शांत होगा ही नहीं, क्योंकि मन का राजा ऋषिकेश है। भगवान ऋषिकेश यदि आप नहीं करेंगे तो क्या होता? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उचित। जब तक अपनी इंद्रियों को और मन को हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तब तो जो हमारा मन जो है चंचल रहेगा। और अनेक प्रकार की उपाधियों हमें उपाधि चाहिए, आई एम सो एंड सो, आई एम मिस्टर एक्स, आई एम मिस्टर वाई, आई एम ब्लेंडर, ये है वो है, हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं, हम प्रजापति हैं, हम राजा है, ये है वो है। तो इस उपाधि से प्रजापति दक्ष भी नहीं मुक्त हो पाए कि मैं तो प्रजापति हूं, मैं क्यों शिव जी का उठ करके शिव जी को उठ के मुझे प्रणाम करना चाहिए। शिव जी जो वैश्वानाम यथाशंभु, और वो उन्होंने सोचा कि भाई मैं अगर आया हूं असेंबली सभा में तो सब देवता खड़े हुए तो शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? तो ये अहंकार है, क्योंकि अपने को समझता है मैं प्रजापति हूं, मैं पति हूं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जो है प्रजापतियों के भी पति हैं। तो ये मन की जो बात है कि मन जो है, मन को यहां पुरंजन जो है मन को कंट्रोल नहीं कर पाया है और उसने अपने मन और इंद्रियों को लगा दिया है विषय भोग में, अनरिस्ट्रिक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन में। हालांकि वो सांसारिक धन में प्रवृत्त हुआ है, उसको मन में ध्यान भी है कि मुझे कुछ दान यज्ञ तप व्रत करना चाहिए और साथ साथ मुझे लेकिन वो विषय भोग में इतना आसक्त हो गया है, क्योंकि ऐसा कि अनासक्त से विषयान, रघु गोस्वामी का कथन है कि हमें विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो बे माना, कभी हमें हेराबो श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो बे माना, मन कब शुद्ध होगा? जबकि हम विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ देंगे। आप विषयों के प्रति आसक्ति रखे हैं और साथ साथ में हरिनाम जप रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, हालांकि वो नाम अपराध हो जाता है लास्ट जो है, लेकिन उसमें चौधरी ठाकुर कहते हैं कि फिर भी जो है आप नाम लेना मत छोड़ो। नाम अपराध युक्ता नाम, अगर नाम अपराध कर भी रहे हैं तो भी नाम लेना नहीं छोड़ो, नाम जपते रहिए। उसे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हरिनाम इतनी शक्ति है कि आपको विष्णु के प्रति आसक्ति पैदा कर देगी। हालांकि अभी जनरली मोस्ट मेजोरिटी केसेस में भक्तों के साथ में ऐसा होता है कि मन एकाग्र नहीं रहता है, भगवान का हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं तो किधर उधर मन भटक ही जाता है। उसका कारण है कि अनेक जन्म जन्मांतरों से हम ये जीव जीव है ये विषयों के संग में रहा है, शरीर के संग में रहा है, तो उसको टाइम लगेगा क्लियर होने में। लेकिन अभी निरंतर आप भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो धीरे धीरे विषयों को छोड़ देगा, विषय वास्तवों में भोग करने की इच्छा को भी छोड़ देगा, विषयों के प्रति आसक्ति हो जाएगी और फिर सीधे शुद्ध नाम अपने आप आने लग जाएगा। तो पुरंजन के आख्यान से हमें कई एक शिक्षाएं लेनी है, और वह यह है कि क्या है कि इन सभी विषय वासनाओं में हमें लगे रहेंगे तो इसका अंत कहीं ना कहीं तो होता है। अंत कैसे होता है? मृत्यु जब आ जाती है, मृत्यु सहसा उपस्थित होती है और वो चौंका देती है। और ये जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके जितने भी प्लान को सबको अस्त व्यस्त कर देती है। मृत्यु सर्वहर श्याम, तो उनको सारे अस्त व्यस्त करके उनके सारी प्लानिंग को पूरा डैमेज तोड़फोड़ कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जब इंद्रियों तृप्ति का एक लिमिट तो है ही, अनलिमिटेड आप कर नहीं सकते हो कि हमारे ऐसे भी जब जैसे आगे आएगा जरा आगे विस्तांत आएगा कि ये संसार में छह प्रकार के भौतिक कोड़े हैं, हमें हमेशा मारते रहते हैं। क्या क्या है? भूख है, प्यास है, शोक है, मोह है, जरा है और मृत्यु है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको ये छह प्रकार के कोड़े नहीं मारते हो, ताप नहीं देते हो। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। वो ध्रुव महाराज की बात दूसरी थी कि हर तीसरे दिन जो है वो घसा घास वगैरह खाते थे, हर छठे दिन वो फ्रूट बेरीज खाते थे, नौवें दिन में एक बार जल पीते थे और 12 दिन में एक बार हवा लेते थे। अगर यहाँ पर भक्तों को कहा जाए कि भाई देखिए आपको 3 दिन तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लंच नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, क्या होगा? सब भक्त लोग बोलेंगे भूखे भजन हो कृपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये भूख है, यहाँ तक ब्रह्म लोक में भी जाएंगे तो भूख प्यास लगती है लेकिन कम लगती है। यहाँ दिन में 3 बार लगती है, वहां 3 दिन में 1 बार लगती है। और वहां एज का भी फर्क है, देवताओं का लोग जो है वहां का 6 महीना, यहाँ का 1 दिन। ये उल्टा बोल रहा हूं मैं, हाँ, यहाँ का 6 महीना वहां का 1 दिन, और यहाँ की 6 महीना की रात वहां 1 रात। तो मैंने 720 डेज जो मृत्यु लोक का है वहां उनका 1 दिन होता है। और अगर चंद्रलोक में आप जाएंगे थोड़ा हवन वगैरह करके तो वहां कितना रह सकते हैं आप? 10,000 ईयर्स तक रह सकते हैं, 10,000 वर्ष तक रह सकते हैं। तो कितना दिन रहेंगे बताइए? 10,000 टाइम्स 720। तो ये हमें भक्तों को क्या है, अव्यर्थ कालत्वम, हर एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। खाते उठते सोते बैठते जल पीते समय भी, सूर्य चंद्रमा को देखते समय हमेशा भगवान को स्मरण करते रहना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बस 16 माला कर लिया और मेरा काम हो गया। 16 माला तो आप कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी बिना माला के भगवान का नाम ले सकते हैं। आप जल पीते हैं तो कहते रसोहम सुकौन्तेय, भगवान आप जल में रस हो, यू आर द टेस्ट ऑफ वाटर। अगर आप सूर्य चंद्रमा की लाइट देख रहे हैं तो ये तो भगवान का ही तेज है ना। यदा आदित्य गदम तेजो जगत वास खिलम यज्चाग्नो तत्तेजो विद्यमानकम्। तो ये सब जो तेज है ये भगवान का ही तेज है। अब यहाँ तक कि जो है यहाँ तक सूर्य की रोशनी आ रही है, देखिए लाइट आ रही है, सनलाइट यहाँ भी आ रही है। तो ये लाइट किसका है? मम तेजो तो संभव भगवान का है। तो भगवान को आप याद कर सकते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं जल में रस हूं, मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं, और जितना भी इनका तेज है वो मेरा तेज है। तो भगवान को आप याद कर सकते हो, जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, नदियों का जल है। तो यहां तक कि भगवान कपिल देव ने कहा मत भयात वात वातो यम सूर्य तपत मत भयात। कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि मेरे भय से हवा बह रही है, मेरे भय से सूर्य ताप देता है, और वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, मेरे भय से जो है इंद्र पानी बरसा रहा है, और अग्नि जो ज्वल कर रही है वो जल रही है मेरे भय से बह रही है। और यहां तक कि मृत्यु शरति मत भयात, मृत्यु भी जो है पानी, मृत्यु भी मेरे भय से सबको काल का ग्रास बना रही है। देखिए तो जो मृत्यु भी है, जो काल भी है, वो भगवान के भय से अपना कार्य कर रहा है। तो कहते हैं कि भक्ता नाम अभयंकर, सो बड़े से बड़े भय को भी भगवान के नाम लेकर के आप हटा सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं कथा को विराम दे रहा हूं, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैंने एक नई बुक लिखी है, पुस्तक, उसका नाम हरि नाम महिमा है। गाड़ी से लाए हैं क्या बुक? ये बुक है, उसमें हरि नाम महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें भागवतम, चैतन्य चेतामिता, चैतन्य भागवत, सब पुराणों से, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, पुराणों से, रामायण इत्यादि से, गीता से, सबसे लिया गया है। तो आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इसको पढ़कर आप लोगों के हरि नाम लेने की प्रेरणा और भी बढ़ेगी। हरे कृष्ण, तो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, इसके बारे में चटपटी ठाकुर ने कहा है कि जो शिकार खेलने जा रहे हैं उसमें 6 नियम है। आपने अगर जो में पढ़ा होगा तो लिखा कि वो हर दिन शिकार नहीं करने जा सकते, उनके लिए एक फिक्स डेट होता है। और वो शिकार, जैसे कि श्राद्ध के लिए शिकार में जो पशु पक्षी मरते हैं वो श्राद्ध में उनको बलि देना पड़ता है, उनको दर्पण करना है, उसके लिए एक अलाव है। और राजा को ही अलाव है, सब क्षत्रिय को अलाव नहीं है, ओनली द किंग। सब क्षत्रिय बोले हमको भी शिकार करना है तो नहीं, तो राजा को होना चाहिए। शिकार कुछ पुण्य तिथि पे करना चाहिए, उसका शिकार का जो है वो जानवरों की बलि जो है यज्ञ में दी जाएगी और श्राद्ध तर्पण में दी जाएगी। श्राद्ध का दिन भी हर महीने नहीं श्राद्ध होता, पितृपक्ष में होता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। ये नहीं कि आपने पशु का शिकार किया और उसका मांस खा गए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, तो बहुत सारे नियम हैं। तो ये कहा गया पुरंजन को, यहाँ तक कि राधा प्राचीन मेरे साथ को नारद ने कहा कि आपने जो इतने सारे पशु पक्षियों को मारा है, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो आसमान में देखो कितने सारे वेट कर रहे हैं कि जैसे ही राधा की मृत्यु होगी वैसे ही वो उसका मांस और बोटी नोंद उसके खाएंगे। वो आपने भले ही यज्ञ के लिए किया है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा को दिखाया और राजा देखा, अरे इतने सारे पशु जानवर जो है उसका वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राजा की मृत्यु होगी और कब उसको वो खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबको शिकार खेलने का परमिशन नहीं है, क्यों राजा लोगों को करना होता है। तो जो राजा लोग शिकार खेलते हैं वो उनका एक पर्पज होता है, वो उसके लिए जो मारते हैं वो श्राद्ध के लिए अर्पण करते हैं, या फिर वो हवन में करते, यज्ञ इत्यादि में करते हैं, और किसी निश्चित पुण्य तिथि के अंदर होता होना चाहिए, और इसका एक प्रॉपर नियम है, वो इंद्र तृप्ति के लिए और मांस खाने के लिए नहीं। आप सबको अभी तो टाइम नहीं, अभी टाइम है क्या अभी? दे सकते हैं।
हरे कृष्णा, हम श्रीमान दीनदयाल प्रभु का विशेष आभारी है। तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा है, मैं अभी उसकी इंडेक्स देख रहा था, करीबन 14 अलग अलग विशेष शास्त्र है, जैसे पद्म पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, रामचरित मानस, मुकुंद माला स्तोत्र, विनय पत्रिका, भगवद गीता इत्यादि 14 और उससे भी अधिक। तो ये सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसमें हरि नाम की महिमा बहुत अच्छी से बताई है। तो सभी भक्तों के लिए वो प्रभु जी अपने हाथों से देना चाहते हैं। तो आइए प्रभु जी का हम विशेष आभार प्रकट करें 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्रीमान दीनदयाल प्रभु की जय।
हरे कृष्ण। हाँ।